में, सब में तवील बड़ी लंबी सूरत, मक्की सूरतों में सब में तवील सूरत सूरह अराफ है। इंशाल्लाह आज हम इस सूरह को समझने की कोशिश करेंगे। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें कहने और सुनने से ज्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए, और इंशाल्लाह कोशिश करते हैं कि आज हम इंशाल्लाह इसको कंप्लीट करें। अल्लाहुम्मा यस्सिर, आमीन या रब। चलिए बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। तो ये आयत जो मैंने अभी 10 आयतें आपके सामने तिलावत और तर्जुमा की, उसका छोटा सा तफहीम मैं आपके सामने बयान करूँ। ये है कि अल्लाह ताला ने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हुक्म दिया कि आप इस कुरान के जरिए कुफार को डराएं। अब रहे मोमिन, वो तो इस कुरान से नसीहत पकड़ते हैं। और फिर फरमाया जो हिदायत अल्लाह ने नाजिल फरमाई उसकी पैरवी करो, और अपने औलिया यानी अपने औलिया की पैरवी ना करो। औलिया कौन है? जो दोस्त है, लोगों ने अपने वली अलग अलग बना बैठे हैं। तो अल्लाह ताला बोल रहे हैं कि अपने औलिया की पैरवी मत करो, अल्लाह की फरमाबरदारी करो। अल्लाह हिदायत दिया ना, अल्लाह ताला ने हिदायत दी, सारा कुरान हमारे सामने रखा हुआ है। तो अल्लाह ताला बता रहे हैं कि इस हिदायत की पैरवी करो, और इत्तबिओ माउनजिला इलैकुम, जो नाजिल हुआ ना तुम्हारे ऊपर यानी कुरान, उसकी इतबा करो। वला तत्तबिओ मिन दूनी औलिया, उसके अलावा कोई और दूसरा वली की इत्तबा मत करो। तो कितनी ही ऐसी, इसके बाद अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि कितनी ही ऐसी बस्तियां हैं जिन्होंने अल्लाह की हिदायत की पैरवी नहीं की, और अल्लाह ने इन पर अजाब नाजिल कर दिया। कब? जब बाज वक्त वो सो रहे थे, अचानक आया उन पर अजाब, कि जब वो सो रहे थे या फिर दोपहर के वक्त आराम कर रहे थे। तो उस अजाब के बाद अल्लाह ताला जिक्र करते हैं मैदान हश्र का, कि अल्लाह ताला जरूर सवाल करेगा पैगंबरों से और उनकी उम्मतों से। क्या सवाल करेगा पैगंबरों से? कि क्या तुमने हक अदा कर दिया था, दीन पहुंचा दिया था, पैगंबरी का हक अदा कर दिया था, दीन पहुंचा दिया था? और उम्मतों से सवाल करेगा अल्लाह कि तुमने उसको लेकर क्या किया। हालांकि अल्लाह जानता है, अल्लाह जानता है, वो फिर भी सवाल करेगा। अल्लाह जानता है लेकिन वो फिर भी सवाल करेगा। क्यों सवाल करेगा? क्योंकि अल्लाह ताला उस दिन जलाल में होगा। होता ना बाज वक्त, देखिए आप दुनिया में बाज मिसालें देखिए, कोई गुस्से में रहे तो क्या करते, हालांकि मालूम है क्या हुआ लेकिन गुस्से से सवाल करते नहीं, क्या करे आप, क्या करे थे, क्या करे। तो अल्लाह अकबर, अल्लाह ताला का जलाल तो बहुत ही खतरनाक होगा कयामत के दिन। अल्लाह ताला उस जलाल में बंदे से सवाल करेगा, अल्लाहुम्मा हासिबनी हिसाबन यसीरा, अल्लाह हमारे हमसे आसान हिसाब ले, आमीन या रब। बहरहाल जिस दिन अल्लाह ताला मीजान कायम करेंगे, उस दिन यानी नेकियों का फल्ला, यानी अल्लाह ताला तराजू में तोलेंगे ना अमाल को, तो जिसके नेकियों के फल्ले भारी होंगे वो कामयाब हो गए, और जिसके फल्ले हल्के हुए वो तो खसारे में जाएंगे। इन्होंने अल्लाह की फरमा बरदारी नहीं की, जबकि अल्लाह ने इन्हें जमीन में ठिकाना दिया था, जिंदगी गुजारने का सारा सामान दिया, लेकिन फिर भी इन्होंने शुक्र अदा नहीं किया। इसके बाद ये 10 आयतों की मुख्तसर सी तशरीह थी, उसके मुख्तसर तर्जुमा तशरीह थी। उसके बाद इंशाल्लाह आयत नंबर 11 से 25 तक, आयत नंबर आराफ की आयत नंबर 11 से 25 तक अल्लाह ताला ने आदम अलैहिस्सलाम के बारे में फरमाया। क्या फरमाया? कि अल्लाह ने आदम को पैदा किया, तमाम फरिश्तों को सजदे का हुक्म दिया, तो इबलीस ने क्या किया, सजदे से इंकार कर दिया। तो अल्लाह ने वजह पूछी, भाई तो आखिर तूने क्यों इंकार किया? तो उसने कहा कि मैं बेहतर हूं, मुझे तूने आग से पैदा किया और आदम को मिट्टी से। तो अल्लाह ताला ने उसके तकबर की वजह से उसको जन्नत से निकाल दिया। और उसने कहा तू मुझे उस दिन तक मोहलत दे या अल्लाह, जब लोग खबरों से उठेंगे जब तक मुझे मोहलत दे। तो अल्लाह ने कहा ठीक है, तुझे मोहलत दी गई। क्या बोले अल्लाह ताला? ठीक है, तुझे मोहलत दी गई। और यहाँ पर नोट करने वाली बात है आयत नंबर 16, 17 और 18 सूरह अराफ की। नोट करने वाली बात है, अल्लाह ताला ने फरमाया कि जब अल्लाह ने उसे मोहलत दे दी तो शैतान बोला कि लअक्उदन्न लहुम, खाला कहा कि लअक्उदन्न लहुम, मैं कहाँ बैठूंगा, सिरात मुस्तकीम, तेरे सिरात मुस्तकीम के ऊपर बैठूंगा, और क्या करूंगा, गुमराह करूंगा। क्या बोला शैतान? अल्लाह मैं तेरे रास्ते पर बैठूंगा और जरूर बैठूंगा और जरूर तेरे बंदों को गुमराह करूंगा, फिर उनके सामने से, उनके पीछे से, उनके पास आऊंगा, उनके दाएं से आऊंगा, बाएं से आऊंगा। अल्लाह अकबर। इसके बाद अल्लाह ताला बता रही कि तू देखेगा कि अक्सरियत को तू नाफरमान पाएगा, उनमें से अक्सरियत को तू नाफरमान पाएगा। अल्लाह अकबर। अल्लाह ताला बता रही कि बंदा यानी बंदों को शैतान बहकाएगा, और कैसे बहकाएगा, वो बोल चैलेंज किया उसने कि मैं जरूर बहकाऊंगा, जरूर बहकाऊंगा, और कहां से क्या क्या बोल रहा देखिए, आगे से पीछे से दाएं से बाएं से, यानी हर तरफ से उसको बहकाऊंगा। तो अल्लाह ताला क्या बोले, ठीक है बहका ले। क्या बोले अल्लाह ताला, ठीक है भाई बहका ले। तो अगर जिसको भी बहकाएंगा और वो बहक के यानी जहन्नमियों वाला काम करेगा, तो तुझको यानी अल्लाह ताला बताए कि जो भी तेरी पैरवी करेगा तो मैं जहन्नुम को तुम सबसे जरूर भर दूंगा। अल्लाह अकबर। जब उन्हें बोला ना कि मैं इधर से उधर से बहकाऊंगा, तो अल्लाह ताला क्या बोले, काला खुरुज मिनहा मज़मूमन मदहूरा, निकल यहाँ से बोले अल्लाह ताला, निकल जाए यहाँ से, तू हकीर और तू तारा हुआ है, फिर जो भी तेरी पैरवी करेगा मैं उसे उस सबको जहन्नम से भर दूंगा तेरे साथ। अल्लाह अकबर। देखिए बहनों, शैतान का काम ही है बहकाना, लेकिन बंदा क्या करना चाहिए, अल्लाह ताला ही की पैरवी करना समझ जाना चाहिए। अल्लाह ने अवेयर कर दिया, यहाँ पर होशियार कर दिया कि एक वक्त ऐसा आने वाला है कि शैतान तुम्हें बहकाएगा। उसके बाद आगे अल्लाह ताला इरशाद फरमा रही कि आदम अलैहिस्सलाम से अल्लाह ताला ने कहा था कि तुम और तुम्हारी बीवी जन्नत में मजे से रहो, खाओ पियो। पिछले भी हमने जिक्र सुना था सूरतुल बकरा में, अल्लाह ताला यहाँ पर अलग अंदाज से यहाँ पर इरशाद फरमा रहा है, और थोड़ा आदम अलैहिस्सलाम के बारे में एक्स्ट्रा आया यहाँ पे, पिछले जो हमने पढ़ा था सूरतुल बकरा में, यहाँ पर और आगे अल्लाह ताला इरशाद फरमा रही कि शैतान ने उनके दिलों के उन दोनों के दिलों में वसवसा डाला, और कसम खाई कि मैं तुम्हारा खैरख्वाह हूँ। यानी जब आदम अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया ना अल्लाह ताला कि तुम और तुम्हारी बीवी जन्नत में रहो, आराम से मजे से खाओ पियो, उस दरख्त के करीब भी ना फटकना, तो फिर अल्लाह ताला बता रही शैतान ने क्या किया, उन दोनों के दिलों में वसवसा डाला और कसम खाई कि मैं तुम्हारा खैरख्वाह हूँ। इस तरह शैतान ने दोनों को धोखा देकर फुसला दिया, और जब आदम और आदम अलैहिस्सलाम हमारे सलाम ने दरख्त का फल खाया, तो फिर उन दोनों की शर्मगाहें खुल गई और वो दोनों पत्तों से अपने सतर को छांपने लगे। फिर उनके रब ने उनको आवाज दी और कहा, क्या मैंने तुमको नहीं कहा था, क्या मैंने तुमको इस दरख्त से नहीं रोका था, और मैंने ये नहीं कहा था कि शैतान तुम्हारा खुला दुश्मन है। तो उन दोनों ने कहा, रब्बना ज़लमना अन्फुसना, ऐ हमारे रब, हमने अपने अपने नफ्सों पर जुल्म किया, व इन लम तग़फिर लना, अगर तूने हमें माफ नहीं किया, व तरहमना, और हम पर रहम नहीं किया, तो लनकूनन्ना मिनल खासिरीन, हम नुकसान उठाने वालों में से हो जाएंगे। फिर अल्लाह ने कहा, तुम उतर जाओ यहाँ से, सब चले जाओ यहाँ से, तुम एक दूसरे के दुश्मन हो, बअअज़्ज़ुकुम लिबअअ्ज़िन अदुव्वुन, तुम एक दूसरे के दुश्मन हो, और तुम्हारे लिए जमीन में एक वक्त मुकर्रर तक ठहरना है। फिर फरमाया, तुम इसी जमीन में जिंदा रहोगे और इसी में मरोगे, और कयामत के दिन तुम इस जमीन से निकाले जाओगे। इसके बाद अल्लाह ताला यानी बनी आदम से खिताब है। इसके बाद कहाँ तक, आयत नंबर 26 से लेके 36 तक, 26 से लेके 36 तक बनी आदम से अल्लाह ताला खिताब करता है। क्या खिताबात हैं, आइए देखते हैं इंशाल्लाह। आयत नंबर 26 से 36 तक क्या है कि या बनी आदम, ए बनी आदम, बेशक हमने तुम पर ऐसा लिबास उतारा जो तुम्हारी शर्मगाहें छुपाता है और जीनत का भी बायस है, लेकिन वह लिबास तक्वा ज़ालिका खैर, तक्वे का लिबास क्या है, तुम्हारे लिए बेहतर है। तक्वे का लिबास क्या है, तक्वे का लिबास, तक्वे के लिबास से क्या मुराद है, ऐसा लिबास जो यानी शरीयत के मुताबिक हो, ऐसा लिबास जो शरीयत के मुताबिक हो वो तकवे का लिबास है। यानी बाज वक्त होता ना, मतलब बंदे कपड़े पहन के भी नंगे होते, नऊज़ु बिल्ला, यानी ऐसा बारीक कपड़ा पहन रहे हैं कि बिल्कुल आर पार नजर आ रहा है, या फिर ऐसे चुस्त टाइट कपड़े पहन रहे कि सारा जिस्म नजर आ रहा, तो वो जायज नहीं है। अल्लाह ताला बोले कि जिस्म को छुपाने के लिए तुम्हारे जीनत के लिए है, और लिबास तकवा ज़ालिक खैर, बेहतर यह है कि तुम लिबास तकवे का लिबास पहनो। तकवे का लिबास ये है कि उससे, खासकर औरतों के लिए मैं कहती हूँ कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ऐसा चुस्त लिबास ना पहनो कि जिससे जिस्म के नशेब व फराज नजर आए, स्ट्रक्चर नजर, यानी हम बोल के नऊज़ु बिल्लाह सिलाने लगाते, फिटिंग का अगर ठीक है आप शौहर के लिए पहनती हैं तो बेहतर है इंशाल्लाह, आप किसी नामहरम के सामने ना जाए वैसे लिबास पहनकर, लेकिन ये क्या बात है कि वैसे लिबास पहन लिया नामहरम के सामने भी निकल जा रही है नऊज़ु बिल्लाह। तो बहरहाल लिबास तकवे का इख्तियार करें, اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اے بنی آدم کہیں شیطان تمہیں فتنے میں نہ ڈال دے جس طرح اس نے تمہارے ماں باپ کو جنت سے نکلوایا تھا جب اس نے ان دونوں کا لباس اتروا دیا تھا تاکہ ان کی شرم گاہیں دکھا دے، بس بے شک وہ اس کا قبیلہ، یعنی اللہ تعالیٰ بتا رہی ہیں کہ بے شک ان کے قبیلے، شیاطین کے قبیلے تمہیں وہاں وہاں سے دیکھتے ہیں جہاں تم انہیں نہیں دیکھ سکتے. اللہ اکبر. بے شک ہم نے شیاطین کو ان لوگوں کا دوست بنا دیا جو ایمان نہیں لاتے، یعنی جو ایمان نہیں لاتے، جس کا ایمان کمزور پڑ جاتا ہے بہنوں فوری شیطان کا حملہ اس کے اوپر ہو جاتا اور شیطان کیا کرتا اس کو اپنا رفیق بنا لیتا اور وہ بھی شیطان کو رفیق بنا لیتا اور جیسا وہ نہ چاہے ناچتے رہتا نعوذ باللہ. تو بہرحال جب وہ دوست بنا لیتا ہے تو جب وہ بے حیائی کا حکم دیتا ہے تو پھر وہ لوگ بے حیائی کرنے لگتے ہیں اور کیا کہتے ہیں کہ ہم نے اپنے باپ دادا کو یہی کرتے ہوئے پایا نعوذ باللہ. تو اللہ تعالیٰ بتا رہی کہ اے نبی آپ کہہ دیجئے اللہ قطعاً بے حیائی کا حکم نہیں دیتا، کیا تم اللہ کے ذمے ایسی باتیں لگاتے ہو جو تم نہیں جانتے؟ یعنی بندہ گناہ بھی کرتا اور کیا کرنے لگتا نعوذ باللہ، الزامات ادھر ادھر لگاتا. کیا بول رہا ہے اللہ تعالیٰ ہی بولے ایسا کرو بول کے نعوذ باللہ، خود کرتا بھی اور الزام کیا لگاتا ہے کہ اللہ نے حکم دیا نعوذ باللہ. تو اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں اے نبی کہہ دو اللہ کبھی کوئی بے حیائی کا حکم نہیں دیتا، کیا تم اللہ کے ذمے ایسی باتیں لگاتے ہو جو تم نہیں جانتے؟ کہہ دیجئے میرے رب نے انصاف کرنے کا حکم دیا ہے. کیا بولے اللہ تعالیٰ، اے نبی کہہ دیجئے میرے رب نے انصاف کرنے کا حکم دیا ہے اور یہ کہ ہر نماز کے وقت میں اپنا منہ قبلے کی طرف کر لوں اور خالص اسی کی اطاعت کروں اس کو پکارتے ہوئے، جیسے اس نے مجھے پہلی مرتبہ پیدا کیا ویسے ہی اس کی طرف مجھے لوٹ کر جانا ہے. تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ ایک فریق پر اللہ نے ہدایت دی اور دوسرے فریق پر، یعنی کچھ لوگ دنیا میں ایسے جو ہوتے ہیں جو ہدایت پر ہیں اور کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو اپنے لیے گمراہی خرید لیتے ہیں. تو یقیناً انہوں نے اللہ کو چھوڑ کر شیاطین کو اپنا دوست بنا لیا اور وہ ایک خیال کرتے ہیں کہ وہی ہدایت یافتہ ہیں. ہاں گڑبڑ یہ ہے. وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ مُهْتَدُونَ، آیت نمبر 30 میں ہے دیکھیں سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ بتا رہی ہیں کہ کیا کرتے ہیں لوگ، گمراہ تو ہوتے، شیطان کو دوست بنا لیتے، شیطان کی بات سننے لگتے اور خیال یہ کرتے ہیں کہ وہی ہدایت پہ ہیں، گڑبڑ یہی ہے. یعنی جو بندہ برائی کرتے ہوئے برائی کو برائی نہیں سمجھتا تو پھر نعوذ باللہ وہ کبھی نہیں سدھر سکتا، وہ نہیں سدھر، مشکل ہے اس کا سدھرنا. اور وہ کیا ہے بدعتیں کرنے والا. بدعتی کیا ہوتا؟ بدعتی گناہ، بدعت کرتے ہوئے، بدعت گناہ ہے. کلو بدعت ضلالہ و کلو ضلالۃ فی النار. بدعتی کیا سوچنے لگتا کہ میں ہدایت پہ ہوں، جبکہ وہ سنتوں کو چھوڑ کر، ہدایت کو چھوڑ کر، ہدایت کہاں ہے؟ قرآن اور حدیث میں. قرآن حدیث کو چھوڑ کر اگر بدعتوں کو پکڑنے لگا تو اللہ تعالیٰ بتا رہی کہ وہ پکڑتا ہی نہیں خالی بدعتوں کو، راہ سے ہٹتا ہی نہیں بلکہ ہٹ کے کیا کرتا، میں ہدایت یافتہ ہوں بولتا. اللہ اکبر. وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ مُهْتَدُونَ، نوٹ کریے اس بات کو، آیت نمبر 30. وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ مُهْتَدُونَ، وہ یہ گمان کرتا کہ وہی ہدایت پہ ہے نعوذ باللہ. تو اللہ اسی بدعات سے ہم کو محفوظ رکھے، آمین یا رب. اس کے بعد اللہ تعالیٰ حکم دیتے ہیں بہنوں، اے بنی آدم تم ہر نماز کے وقت اپنی زینت اختیار کرو. یہ بھی ہمارے لیے ایک اچھا پوائنٹ ہے کہ اکثر یہ ہوتا بہنوں کہ لوگ کہیں دعوت میں جانا ہے، آفیسز کو جانا ہے، کچھ بھی اچھے کپڑے پہن کے جاتے ہیں، نماز کو جانا ہے تو اکثر دیکھی میں بعض مرد آدمیوں کو، اللہ محفوظ رکھے، کیا کرتے ہیں کرتا پائجامہ پہن لو، جو ایسے پہن لے کے جاؤ نماز کو جا رہے نا، ایسا پہنو کرتا میلا رہا پروانی یا پھر نعوذ باللہ پھٹا پرانا، کیا بولے تو نماز کو جا رہے نا، جیسے بولے ویسے چلے جاؤ. نہیں، یہاں پہ اللہ تعالیٰ بول رہی کہ یا بنی آدم، اے بنی آدم، خذو زینتکم عند کل مسجد، مسجد کو جاتے ہو زینت اختیار کر کے جاؤ. اس کے بعد حکم دے رہے کلو وشربو، کھاؤ پیو، ولا تسرفو، بے جا اسراف مت کرو. اللہ اکبر، یہ بھی یاد رکھنے والی بات. آیت نمبر 31 میں دو باتیں یاد رکھنی، ایک مسجد جاتے وقت اچھی حالت سے جاؤ اور دوسرے کھاؤ پیو مگر اسراف مت کرو. اللہ نے کہا حلال پاک طیب چیزیں تمہارے لیے حلال ہے، تم کھا پی سکتے ہو، لیکن اسراف کیا ہے؟ حد سے بڑھ جانا. کئی مثالیں ہیں اس کی، ہم دیکھتے ہیں کیسے شادیوں میں کیا کرنے لگتے لوگ، दो डिश बस नहीं होते भाई, तीन रखो, चार रखो, पांच रखो। अब हिमाकत करने, इनकी शादी में 25 डिशेस थे, उनके 30। इसराफ है ये, इसराफ। इसराफ से अल्लाह ने मना फरमाया। अब देखिए कैसी मार पड़ी। आज भी शादियां हो रही, हम सुनने में आ रहा है ये शादी भी, शादियां हो रही आज भी, कैसे सुन्नत के मुताबिक। अल्लाह ताला ऐसे अजाब नाजिल कर देता है जब सुन्नतों को फॉलो नहीं किया जाता ना, धड़ल्ले से गुनाह किए जाते हैं तो अल्लाह का अजाब आ जाता है, नऊज़ु बिल्लाह। तो बहरहाल अल्लाह ताला बता रहे हैं खाओ पियो मगर इसराफ मत करो, हद से मत बढ़ो, क्योंकि अल्लाह इसराफ करने वालों को पसंद नहीं करता। इसके बाद अल्लाह ताला फरमा रहे हैं, ऐ नबी कह दीजिए जो जीनत और खाने पीने की चीजें अल्लाह ने अपने बंदों के लिए पैदा की है वो किसने हराम कर ली। होता ना बाज़ वक्त बंदा अपने ऊपर हराम करता, पिछले भी पढ़े ना हमने कि तुम अपने ऊपर हलाल चीजों को हराम मत कर लो। अल्लाह ताला बताने कह दीजिए ये पाकीज़ा चीजें दुनिया की जिंदगी में उन लोगों के लिए भी है जो ईमान लाए, जबकि कयामत के दिन ये खालिस मोमिनों के लिए है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्लाह ताला बता रही कि ये मतलब जो ये मतलब खाने पीने की पाक हलाल तय्यब चीजें हैं ना, तो वो अल्लाह ताला ने मोमिन के लिए खास रखी हैं। दुनिया में अल्लाह ताला दे देता जो मोमिन नहीं है उनको भी दे देता है, लेकिन कयामत में अल्लाह ताला बता रही कि सिर्फ पाक खालिस चीजें, सब अच्छी अच्छी प्यारी चीजें तमाम मोमिनों के लिए ही होगी। अल्लाहुम्मा जअलना मिनहुम, अल्लाह उसमें से हमको भी बना दे जो खालिस तेरे मोमिन बंदे हैं। आमीन या रब। इसी तरह अल्लाह ताला बता रहे हैं कि मैं आयतों को खोल खोल कर बयान करते हैं अल्लाह सुभान ताला। इसी तरह हम आयात को उन लोगों के लिए खोल खोल कर बयान करते हैं जो इल्म रखते हैं। इसके बाद कहते हैं अल्लाह ताला कह दीजिए बेशक मेरे रब ने मुझे बेहयाई की बातों को हराम ठहराया है। अल्लाह हू अकबर, इन्नमा हर्रमा रब्बी अल फवाहिश। याद रखिए इस बात को, आयत नंबर 33 याद रखिए कि अल्लाह ताला फरमाता है कि मैंने तुम पर हराम कर दिया है फहश चीजों को, फहश हराम है बहनों। इन्नमा हर्रमा रब्बी अल फवाहिश मा ज़हरा मिन्हा व मा बतन। अगर जाहिरी कोई बेहयाई कर रहे हैं वो भी हराम, बातिनी बेहयाई कर रहे हैं वो भी हराम, छुप के कर रहे हैं तो भी हराम, खुला कर रहे हैं तो भी हराम। यानी बेहयाई, लफ्ज बेहयाई हराम कर दी गई। कई देखे हम यानी औरतों को अकेले घर में भाई, बच्चियां बच्चियां हैं खाली, जो बोले वो पहन के फिर लो, जैसा बोले वैसा रहो। नहीं, घर में हमारे बच्चे भी हैं, अपनी औलाद भी है। आप गैर सातर लिबास में नहीं फिर सकती घर में, सतर एक दूसरे के सामने खोलने का इजाजत नहीं है। जो ऐसे खोल के फिरती है, नहीं कोई भी नहीं घर में नहीं है भाई, बच्चियां हैं खाली, या फिर जो है ना मतलब कुछ भी एक यानी रीजन, सिली रीजन देते हैं और क्या करते हैं कि नऊज बिल्ला फहश करते। फहश क्या है कि आप अपना सतर खोलें फहश है, और किसी नामहरम के सामने जाना फहश है। बेहयाई, बुराई, नामहरम यानी पीछे महरम हम लोग पढ़े थे ना, क्या क्या है महरम रिश्तेदारियां, सूरह बकरा में पढ़े थे ना, अल्लाह ताला गिन गिन के बताए तुम्हारे लिए महरम कौन है, सगे भाई, बाप, मामू, भांजे। हमारे मामू, हमारे भांजे और हमारे चचा, हमारे भतीजे, ये हमारे लिए महरम है। नाना है, दादा है, सुसर है, बस यही महरम, उसके अलावा जितने हैं नामहरम। तो नामहरम के सामने जाना भी फहश है, और कैसे जा रही, गैर सातिर लिबास से, नऊज़ु बिल्लाह, हराम। अल्लाह ताला साफ बता, इन्नमा हर्रमा रब्बी अल फवाहिश, अल्लाह ने फहश को हराम कर दिया। अल्लाह हम सबको समझने की तौफीक अता फरमाए, आमीन या रब। इसके बाद अल्लाह ताला बता रही कि तुम पर नाहक जुल्म को भी अल्लाह ने हराम कर दिया, कि तुम किसी अल्लाह के साथ किसी को शरीक ठहराओ, जबकि अल्लाह ने उसकी कोई दलील नहीं उतारी। इसके बाद अल्लाह ताला बता रही कि तुम अल्लाह के मुताल्लिक वो बातें कहो जो तुम नहीं जानते, वो भी हराम है। वो भी हराम है कि बातें जानते नहीं बोलते जा रहे हो, अल्लाह ताला यही बोला, अल्लाह वो बोला, नहीं, अल्लाह जो बोला वही बोले, उसके अलावा अल्लाह का नाम लेकर नऊज़ु बिल्लाह झूठी बातें करना हराम है। और हर अल्लाह ताला फरमा रहा कि हर उम्मत के लिए एक वक्त मुकर्रर है, जब उसका मुकर्रर वक्त खत्म हो जाता फिर लम्हा भर के लिए भी ताखिर नहीं होती, ना वो लम्हा आगे बढ़ता ना पीछे हटता, और अल्लाह उसको मौत दे देता है। अल्लाह अकबर। फिर अल्लाह ताला फरमा रहा या बनी आदम, अगर तुम्हारे पास तुम्हें से कोई रसूल आए जो तुम्हारे तुम्हारे सामने मेरी आयतें पढ़कर बयान करें, तो जिन्होंने परहेजगारी अख्तियार की और अपनी इसलाह कर ली तो उन पर ना खौफ होगा, ना रंज होगा, ना गम होगा। और जिन लोगों ने हमारी आयतों को छुटलाया, उनसे तकबर किया, तो ये वही लोग हैं जो दोजख में रहने वाले हमेशा रहेंगे। अल्लाह अकबर, अल्लाह हाफ़िज़। उसके बाद आयत नंबर 37 से लेकर 41 तक अल्लाह ताला जहन्नमियों का जिक्र करते हैं। जहन्नमियों का जिक्र करके इरशाद फरमाते हैं, चुनांचे उस शख्स से बढ़कर फमन अज़लमु मिम्मन इफ्तरा अलल्लाहि कदिब, उससे बढ़कर जालिम कौन होगा जो अल्लाह पर झूठ बांधे, अल्लाह पर झूठ बांधे, उसकी आयात को झुटला दे। यही लोग हैं जिनका लिखा हुआ नसीब उन्हें मिल जाएगा, यानी उनको जहन्नम मिलेगी। यहाँ तक कि उनके पास जब यानी दुनिया से ही उनका अजाब शुरू हो जाएगा, जब फरिश्ते उनके पास आएंगे तो पूछेंगे निकालो अपनी रूहों को। अल्लाह अकबर। अल्लाह ताला बता रहा है कि जब फरिश्ते पहुंचेंगे जो इनकी रूह कब्ज करेंगे, तो वो उनसे कहेंगे आज वो कहाँ है जिनको तुम पुकारते थे, तो वो जवाब देंगे कि हाँ वो तो हमसे खो गए। और वो अपने खिलाफ आप गवाही दे, ऐसे गुनाहगार लोग अपने खिलाफ आप गवाही देंगे और बेशक वो कुफर करने वाले थे। इस ताल्लुक से हदीस भी आई है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि बंदा अगर अपने खिलाफ गवाही नहीं दिया वो तो बस तो बंदे बोल देंगे हाँ अल्लाह हम गलत थे, हम ही जो है ना मतलब कुफर कर रहे थे, हम गलती पे थे, अल्लाह माफ कर दे बोलेंगे। लेकिन अल्लाह ताला बोली और आज तो माफी नहीं है। इसके बाद सुभान अल्लाह, अल्लाह ताला क्या बोलेंगे कि यानी हदीस में आता है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया उनके मुंह पर मोहर लग जाएगी, उनके हाथ बोलेंगे, उनके पैर गवाही देंगे, उनके जिल्दें गवाही देंगी। अल्लाह अकबर। यानी हाथ पैर बोल लेंगे। अल्योमा नख्तिमु अला, अल्लाह ताला कुरान में बोले कि आज के दिन मैंने तुम्हारे मुंह पर मोहर लगा दी, तुम्हारे हाथ बोल रहे हैं, तुम्हारे पैर तुम्हारे खिलाफ गवाही देंगे। अल्लाह अकबर। कुरान की भी आयत है, हदीस भी आई इस ताल्लुक से। फिर अल्लाह ताला फरमाएगा तुम इन उम्मतों के साथ आग में दाखिल हो जाओ जो जिन्नों की और इंसानों में से तुमसे पहले गुजर चुकी। यानी उम्मत या गिरोह, यानी एक एक गिरोह को अल्लाह जहन्नम में गिरोह दर गिरोह डालेगा अल्लाह जहन्नम में। अल्लाह अकबर। और अल्लाह ताला बोलेगा ये लो तुम्हारी करतूतों की वजह से आज तुम गिरोह पर गिरोह जन्नत जहन्नम में जाओ। जब एक गिरोह आग में दाखिल होगा तो वो अपने जैसे दूसरे गिरोह को लानत और मलामत करेगा, यहां तक कि जब सब इकट्ठे हो जाएंगे तो इनकी दूसरी जमात उनकी पहली जमात के बारे में कहेगी ऐ हमारे रब इन लोगों ने हमें गुमराह किया था। क्या बोलेंगे? रब्बना हा उलाई अदल्लूना, इन लोगों ने हमको गुमराह, होता ना एक का देख के एक करते, एक करा गुमराही दूसरे भी करते, उन्होंने भी कर रहे हैं चलो हम भी करेंगे, उन्होंने ये बेहई का काम करे हम भी करेंगे, उन्होंने इस तरीके से अल्लाह रसूल की नाफरमानी की उस पर अल्लाह रसूल की नाफरमानी नहीं लेते, अरे एंटरटेनमेंट है भाई ऐसा कर लिए चलो उन्होंने भी करे ना हम भी करेंगे, ये भी करेंगे वो भी करें करो। अब इसके बाद अल्लाह ताला बता रही कि एक गिरोह दूसरे गिरोह को बोलेगा अरे अल्लाह अल्लाह के सामने बोलेगा कि ए रब्बना ए हमारे रब हाउलाई अदलना, ये लोग हम लोग को गुमराह करे थे। आता हूँ आजावन